दिन भर तारीख 18 मई दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। गुजरात पुलिस का दावा कि उसने 2002 के गोधरा कांड के मुख्य साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार, पर गिरफ्तारी में 14 साल कैसे लगे?
14 साल इनको खोजने में इसलिए लग गए क्योंकि ये काफी ज्यादा छुपने के लिए काफी आवरण रचा करते थे। इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, गोधरा में किसी के संपर्क में नहीं रहते थे।
बिहार में पत्रकार हत्या के मामले में सिवान जेल में छापामारी, मिले 38 मोबाइल। मौत से तुंग की सांस्कृतिक क्रांति के 50 साल पूरे, दुनिया जहान में बताएंगे आज कितने प्रासंगिक हैं माओ।
पूरी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बिना किसी विशेष अंदरूनी मतभेद के बाजार समाजवाद के रास्ते पर चल रही है, अब उसे सांस्कृतिक क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। गुजरात पुलिस ने गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने की घटना के प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गुजरात पुलिस के एटीएस प्रमुख हिमांशु शुक्ला ने कहा है कि फारूख भाना गोधरा कांड के मुख्य अभियुक्त हैं। ट्रेन में आग लगाने के लिए फारूख ने पेट्रोल बम का इंतजाम किया था और घटना के बाद वो फरार हो गए थे। साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे भड़के थे। श्रीलंका में अधिकारियों ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में 37 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार संस्था रेड क्रॉस के प्रवक्ता महेश जॉनी ने कहा कि 3 गांवों के 200 से ज्यादा परिवार भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। महेश जॉनी ने कहा कि राहत कार्य में अड़चनें आ रही हैं क्योंकि भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में मलबा निकालने वाली मशीनें पहुंचाना आसान नहीं है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और कहा है कि लापता लोगों को ढूंढना सरकार की प्राथमिकता है। नाइजीरिया में चरमपंथी संगठन बोको हराम ने 2014 में 276 स्कूली लड़कियों को अगवा किया था, उनमें से एक लड़की के मिलने की खबर है। नाइजीरिया में सक्रिय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बोको हराम के चंगुल से बचने वाली ये पहली लड़की है। नाइजीरियाई सेना ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अमीना अली के मंगलवार को कैमरून के सीमा के पास सांबिसा के जंगलों से मिली थी। कहा जा रहा है कि उसके साथ एक बच्चा भी है। चिबोक अभिभावक संघ के अध्यक्ष होसिया आबना सांबिदो ने बीबीसी को ये बताया।
कल
एक निगरानी दल ने सामान्य गश्त के दौरान एक लड़की को देखा। वो चिबोक की लड़की में से एक थी। वो उसे चिबोक ले गए हैं। कल चिबोक में माता पिता, नेता और बाकी लोगों ने उसे पहचान लिया है। अब उसे दाम्बाओ में सेना को सौंप दिया जाना है। ये थे होसाओ अबना सांबिदो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में चरमपंथियों के नियंत्रण वाले इलाके में एक हमले में एक ही परिवार के 13 सदस्यों की मौत हो गई है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था ने कहा है कि रस्तान शहर के एक इलाके में हमला किया गया था। होम्स प्रांत का रस्तान आखिरी शहर है जहां पर चरमपंथियों का कब्जा बाकी है और कई महीनों से यहां सेना के साथ लड़ाई जारी है। इराकी सरकार ने कहा है कि पश्चिमी शहर रुतबा को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से छुड़ा लिया गया है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने कहा है कि रुतबा शहर के बीच में सेना और स्थानीय कबायली नेताओं ने झंडा फहरा दिया है। जॉर्डन की तरफ जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित रुतबा शहर पिछले कुछ महीनों से सेना के नियंत्रण में आए शहरों में आखिरी शहर है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। सत्ताईस फरवरी 2002 गोधरा कांड। साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने की वजह से 58 लोग मारे गए थे, जिनमें से कई अयोध्या से कार सेवा कर लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता थे। इसके बाद गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे भड़के थे और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 1000 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश मुसलमान थे। पुलिस का दावा है कि उसने 14 साल पहले हुए इस गोधरा कांड के मुख्य साजिशकर्ता फारूक मोहम्मद भाना को गिरफ्तार कर लिया है। ये साजिशकर्ता कौन है, कहाँ से उन्हें पकड़ा गया, 14 साल क्यों लग गए, इन सारे सवालों के साथ मैंने बात की गुजरात पुलिस के ATS प्रमुख हिमांशु शुक्ल से।
इनका नाम है फारूक मोहम्मद भाणा और ये गोधरा के एक्स कॉरपोरेटर थे। जब ये इंसिडेंट बना था सन 2002 में, तब उस समय ये पोलन बाजार के कॉरपोरेटर हुआ करते थे और गुनाह दाखिल हुआ तारीख 27/2/2002 को, उसके बाद से ये फरार थे।
फरार यानी कि कहाँ चले गए थे ये?
ये अलग अलग जगह घूमते रहे और पिछले कई सालों से ये बॉम्बे में अपना नाम उमर धारण कर लिया था और वहाँ छुप के रह रहे थे।
कहाँ से इनकी अरेस्ट हुई है?
इनकी अरेस्ट गोधरा डिस्ट्रिक्ट में कालूल नाम की जगह है, वहाँ के टोल प्लाजा से हुई।
ये आखिरी अभियुक्त थे जितने गोधरा मामले में अभियुक्तों की संख्या बताई जाए, 14 साल कैसे लग गए?
14 साल इनको खोजने में इसलिए लग गए क्योंकि ये काफी ज्यादा छुपने के लिए काफी आवरण रचा करते थे। इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, गोधरा में किसी के संपर्क में नहीं रहते थे और जैसे ही ये गोधरा में अपने परिवार से मिलने आए, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे इनको अरेस्ट किया गया। तो चूंकि ये अपने आप को पूरी तरह से गोधरा में परिवार से और बाकी सह आरोपियों से काट करके इन्होंने रखा हुआ था और दूसरा नाम धारण किया हुआ था, इसलिए इतने लंबे समय तक मेरा मानना है कि छुपने में सफल रहे।
मुख्य रूप से आरोप क्या हैं?
इनके ऊपर आरोप ये है कि ये 27/2/2002 को सवेरे जब साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाई गई थी, उसके एक दिन पहले कॉन्स्पिरेसी की गई थी अमन गेस्ट हाउस में गोधरा में। उस कॉन्स्पिरेसी में ये शामिल थे और 27 तारीख को ट्रेन में आग लगाई जाए, इस कॉन्स्पिरेसी को रचने में इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। यह आरोप हमारे द्वारा नहीं लगाया गया है बल्कि यह जो उस समय इन्वेस्टिगेशन हुआ उस चार्जशीट में और उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद की गई चार्जशीट में है। हम लोगों ने ये वांटेड थे और कोटा की सेक्शन लगी हुई थी और वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन, तो उस आधार पे ATS ने इनको खोजा और अरेस्ट किया और अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT को हैंड ओवर कर दिया है।
ऐसा भी खबरें हैं कि ये पाकिस्तान भी गए?
अब पाकिस्तान ये गए हैं कि नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रची गई उसके द्वारा की जाएगी। हालांकि यह चर्चा गोधरा में काफी व्यापक तौर पे थी कि फारूक भाणा बनाव के बाद पाकिस्तान भाग गए।
अब आगे की कार्रवाई क्या हो रही है?
इनके खिलाफ कल सेक्शन 70 CRPC का वारंट था जो कि कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है और जब कोर्ट द्वारा वारंट इशू किया जाता है तो आरोपी को सबसे पहले कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसके रिमांड की रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से और अगर कोर्ट उस चीज को ग्राह्य रखती है तो उस पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, अन्यथा उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वह इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और रिमांड की रिक्वेस्ट करेगी।
ये थे गुजरात पुलिस के ATS प्रमुख हिमांशु शुक्ला। तो गुजरात पुलिस का दावा है कि उसने गोधरा कांड के प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गोधरा कांड मामले में 97 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी और 2011 में गोधरा की एक अदालत ने कुल 31 अभियुक्तों को दोषी पाया था। 11 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी जबकि 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियुक्तों में से 64 को निर्दोष पाया गया और फारूक इस मामले के आखिरी अभियुक्त थे जो गिरफ्तार नहीं हुए थे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। कार्यक्रम में भारत की खबरों का जिक्र थोड़ा सा ठहर के करेंगे कि बिहार में सिवान के जेल में किस तरह से छापामारी की गई, लेकिन फिलहाल एक अंतर्राष्ट्रीय खबर लेते हैं। श्रीलंका में 3 दिन की भारी बारिश के बाद भूस्खलन में कई लोग लापता हैं। रेडक्रॉस का कहना है कि भूस्खलन में 200 से ज्यादा परिवारों के गायब हो जाने की आशंका है, यानी कि उनके दब जाने की आशंका है। बचाव दल अब तक 13 शवों को निकाल चुके हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के चलते घर छोड़ना पड़ा है। सरकार ने लोगों को अपनी ओर से पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए तृप्ति श्रीवास्तव से।
भारी बारिश और भूस्खलन ने श्रीलंका के कई इलाकों पर असर डाला है। 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने बचाव दलों की परेशानी बढ़ा दी है। भूस्खलन की वजह से श्रीलंका के किगाले जिले के 3 गांवों में भारी तबाही हुई है। रेडक्रॉस का कहना है कि 200 से ज्यादा परिवारों के मलबे में दबे होने की आशंका है। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के मुताबिक करीब 150 लोगों को बचाया गया है। इलाके के 60 से ज्यादा मकान कीचड़ के मलबे में दबे होने की आशंका है। श्रीलंका के आपदा मंत्रालय ने लोगों को मदद देने का आश्वासन दिया है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन मंत्री अनुरा यापा ने कहा,
मंत्रालय ने आज 1,50,00,00,000 रुपए समाज सेवा विभाग को जारी कर दिए हैं। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके मालिकों को घर बनाने में सहायता दी जाएगी।
पिछले 3 दिनों की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 32 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। करीब 3.5 लाख लोगों को बाढ़ ने बेघर कर दिया है। मंगलवार को अरनाय के गाँव में भारी भूस्खलन हुआ। ये भूस्खलन अपने साथ चट्टाने, पेड़ और कीचड़ ले आया। बचाव दलों का कहना है कि उन्हें इन इलाकों में बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंकन मिलिट्री ने बीबीसी को बताया कि 300 अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जिन्होंने पिछली रात 150 से ज्यादा लोगों को बचाया। इस बीच अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने जनता से प्रभावित लोगों के लिए खाना, पानी और जरूरत की चीजें पहुंचाने की अपील की है। वहीं राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, श्रीलंका में रेडक्रॉस का कहना है कि भूस्खलन और भारी बारिश के चलते 200 से ज्यादा परिवार लापता हैं।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आइए फिर से एक बार आपको भारत ले आते हैं। बिहार के सिवान में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्या के मामले में पुलिस ने वहां की जेल में छापामारी की है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई की रात को पत्रकार राजदेव रंजन की सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार सरकार पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच कराने की घोषणा कर चुकी है। महत्वपूर्ण है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन भी सिवान की जेल में बंद है और भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने की मांग की है। सिवान की जेल में आज जिलाधिकारी महेंद्र कुमार और एसपी सौरभ कुमार शाह के नेतृत्व में जेल में छापा मारा गया। मैंने बात की सिवान के पुलिस अधीक्षक सौरभ शाह से और पूछा किस सिलसिले में ये छापे डाले गए।
जेल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई थी। इसी दौरान कुछ लोग मिले जो जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे थे, तो उसी में उन लोगों को विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
किस तरह का उल्लंघन कर रहे थे जेल मैनुअल का?
समय के बाहर वहां मौजूद रहना और साथ ही साथ कुछ लोग मोबाइल फोन जारी कर रहे थे, जो जेल मैनुअल का उल्लंघन है।
ये जेल इसलिए भी काफी प्रमुखता से चर्चा में है क्योंकि इसमें शहाबुद्दीन रहते हैं, तो क्या ये मामला इससे भी जुड़ा हुआ है?
हर जगह हम लोग की बिहार में इन जनरल जेल की सुरक्षा के लिए हम लोग विशेष ध्यान देते हैं और सिवान में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, तो उसी दौरान हम लोग रूटीनली चेक करते रहते हैं जेल की सुरक्षा को। कई बार अंदर छापेमारी भी होती है, कई बार बाहरी सुरक्षा की जांच की जाती है, तो आज बाहरी सुरक्षा की जांच थी।
तो क्या क्या चीजें बरामद हुई?
करीब 38 मोबाइल फोन बरामद हुए और 63 व्यक्ति थे जो समय के बाहर वहाँ खड़े थे, तो उन सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
किस तरह की कार्रवाई?
तो इसमें जेल मैनुअल से जो संबंधित धाराएं हैं उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
सौरभ जी, जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई, क्या इस कड़ी को इससे जोड़ के देख सकते हैं हम?
पत्र हत्या के मामले में पहले दिन से ही लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कुछ क्लूज आए हैं, कई चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं, कुछ चीजें नहीं भी आई है पब्लिक डोमेन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना होता है जब तक हम लोग इस अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो उसमें हम लोग निश्चित रूप से रिजल्ट निकाल लेंगे, उसमें लगातार कार्य जारी है, क्योंकि अभी कुछ भी किसी के बारे में कहना इन्वेस्टिगेशन को विशेष कर देगा। इन्वेस्टिगेशन से हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ भी जो भी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होगी।
ये थे सिवान के पुलिस अधीक्षक सौरभ शाह। तो बिहार में पत्रकार हत्या के मामले में सिवान जेल में छापामारी की गई है। बिहार से रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की नजीमाबाद और सरायमीर इलाके में कई गांव पिछले 3 दिन से दहशत में हैं। शनिवार रात मामूली झड़प के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां तनाव है और लोगों का कहना है कि प्रशासन उन्हें घरों से निकलने नहीं दे रहा। घटना के पीछे स्पष्ट कारण क्या है इसकी जाँच हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि इस हिंसा के पीछे राजनीतिक वजहों से इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तु स्थिति समझने के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने इन गांवों का दौरा किया और वहां से हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
निजामाबाद थाना क्षेत्र का खुदादादपुर गांव। चौड़ी सड़क के किनारे बसा ये गांव इतना शांत शायद कभी नहीं रहा होगा। ये शांति वैसे तो हिंसा रूपी तूफान के बाद की है, लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ये किसी बड़े तूफान की आहट न हो।
अगल बगल मुसलमान है, बीच में बस्ती है, हाँ, दौरा दौरा मरते हैं, कड़सा से बल्लम से, सब पब्लिक भाग गए अपने घर में, डर के मारे के बाहर निकलना।
ये जो है कि हमारा जो सामान या हमारी जो है कि प्रॉपर्टी जितनी जो है कि गई है, उसका अपना अफसोस नहीं है जितना कि बिरादरी हमको ताना देती है, कहती है कि जो है कि आपके संबंध तो उनसे बहुत अच्छे थे, आज आपके साथ ये कैसे हो गया।
बुढ़िया बुढ़िया सब लोग हैं, बेटी बहन भगाई गई हैं कि भाई ये लोग के इतना पाप सवार है, कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे लोग के साथ है और जवान बहन बेटी के।
खुदादादपुर, संजरपुर, फरिया, फरीदाबाद, दाऊदपुर गांव के चारों ओर बड़ी संख्या में तैनात पुलिस और पीएसी के जवानों और गश्त करती उनकी गाड़ियों को देख कर भी यही लगता है कि प्रशासन का दावा भले ही स्थिति को नियंत्रण में करने का हो, लेकिन वास्तव में स्थिति नियंत्रण में नहीं है। सड़क किनारे दुकानें अभी भी बंद हैं और सड़कों पर आने जाने वालों के अलावा कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत शनिवार को हुई, लेकिन इसकी बुनियाद करीब 2 महीने पहले ही पड़ चुकी थी। शनिवार को गांव की दलित बस्ती में रहने वाले सीताराम के घर को आग के हवाले कर देने के बाद हिंसा भड़क गई। मुसाफिर का घर है ये, घर में, घर के बाहर से ही पता लग जाता है कि 14 मई को यहाँ पे क्या हुआ है। जले हुए बर्तन, जली हुई अलमारी, जली हुई मोटरसाइकिल और जली हुई एक बच्चों की साइकिल तक यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जिसमें केवल उसके कुछ लोहे के हिस्से बचे हुए हैं, बाकी वो।
आप कौन हैं उनके?
मैं उनका पिता हूँ, हाँ, मेरा घर है।
तो क्या हुआ आप बताएं?
14 तारीख को क्या हुआ, वो वारंट गिरफ्तारी थी, जो गाँव का प्रधान था वो गिरफ्तारी थी, वो आया था, उसको दौड़ाए मारने के लिए, वो भाग करके यहाँ गाड़ी खड़ी कर दिया।
आप तो थे उस समय, घटना के समय आप बता रहे हैं।
डीएम साहब, एसपी साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे, वो लोग हटाना चाह रहे थे हथियारों को कि आप लोग अंदर चले जाओ, लेकिन वो हटना नहीं चाह रहे थे। और उसके बाद जब एक घर को लोग सर्च करना चाहे जो है, उसी के बाद मस्जिदों से अनाउंस होना शुरू हुआ, नारा तकबीर अल्लाह अकबर और इस्लाम खतरे में है, रोड पर आ जाओ, खून की नदियाँ बहा दो। तब इसके बाद जब पूरी हरिजन बस्ती की तरफ आग लगाना शुरू कर दिया, ये सारा काम प्रशासन की मौजूदगी में हुआ।
यही नहीं, कुछ ऐसा ही आरोप मुस्लिम बस्ती के लोग भी लगा रहे हैं।
यहाँ कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, एक यहाँ पर जो है थोड़ा क्रिमिनल टाइप का एक लड़का है, जिसका नाम जो है मुसाफिर कहा जाता है, उसी से अब पता नहीं कुछ थोड़ा बहुत कोई दुश्मनी किसी से रही होगी, और उसके ऊपर उस बच्चे के ऊपर उसने गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद आवाम जो है रोड पर आ गई, हिंदू लोग जो है एक साथ जमा हो गए, और जमा होकर के जो है हमारे गांव पर जो है इन लोगों ने हमला बोला।
कभी उलेमा काउंसिल से जुड़े और वर्तमान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के जिला प्रमुख मोहम्मद नदीम कहते हैं,
ये आपसी झगड़ा कोई नहीं है, ये एक प्री प्लान और संयोजित तरीके से ये फसाद बर्पा किया जा रहा है। आपको मैं बताता चलूं कि खुदादादपुर बहाना है, मुसलमान निशाना है।
दोनों समुदायों का कहना है कि प्रशासन ने यदि सावधानी बरती होती तो शायद ये घटना इतनी बड़ी न होने पाती। वहीं प्रशासनिक अधिकारी घटना की कोई वजह तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपनी पीठ जरूर ठोक रहे हैं। आजमगढ़ के जिलाधिकारी सुहास LY कहते हैं,
अभी आप देख ही रहे होंगे, सिचुएशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, जांच हो रही है कौन इसमें कल्प्रिट है, क्या है, तो उसमें जो भी व्होएवर इज द कल्प्रिट, तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
घटना के बाद प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को इस गांव में आने की अनुमति नहीं दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इसके लिए जबरदस्ती भी की, लेकिन कई लोगों को गिरफ्तार करके सीमा से पहले ही रोक दिया गया। इलाके की भाजपा सांसद नीलम सोनकर फिर भी वहां पहुंच गईं।
हम तो खैर गए घटनास्थल पे, लोगों को संतावना दी, चौथी पांचवी बार की घटना है, छोटी छोटी घटनाएं पहले हो रही थी, पहले ही इन लोगों पे अंकुश लग गया होता, गिरफ्तार हो गए होते, इतना बड़ा घटना न लगता।
इलाके के बुजुर्ग नेता और CPI के प्रदेश पदाधिकारी हरिमंदिर पांडे इन घटनाओं से बेहद आहत है, वो आशंका जाहिर करते हैं।
लगता है कि आगे विधानसभा के चुनाव चलते मुजफ्फरनगर को कहीं दोहरा न दे, आशंका बन रही है।
बहरहाल पुलिस प्रशासन की तैनाती और सख्ती के चलते इन गांवों में ऊपरी तौर पर भले ही शांति दिख रही हो, लेकिन जानकार कहते हैं कि लोगों के भीतर का जो गुबार है उसे देखते हुए इस शांति के लंबे समय तक कायम रहने की उम्मीद कम ही है। समीर आत्मज मिश्र, BBC, खुदादादपुर, आजमगढ़।
तो आजमगढ़ जिले के निजामाबाद और सरायमीर इलाके के कई गाँव पिछले 3 दिन से दहशत में है, वहां पहुंचे समीर आदमज मिश्र ने हमें ये रिपोर्ट भेजी थी। और अब दुनिया जहान। चीन में हुई सांस्कृतिक क्रांति को 50 साल पूरे हो चुके हैं और कहते हैं कि जब चीन के नेता माओ को महसूस हुआ कि सरकार सच्चे कम्युनिस्ट मूल्यों यानी कि सच्चे साम्यवादी सिद्धांतों से भटक रही है तो उन्होंने इस सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया। लेकिन भारी उथल पुथल और अफरा तफरी वाले इस दौर को आलोचक विरोधियों का सफाया करने की मुहिम बताते हैं। क्या माओ की शुरू की गई क्रांति उन्हीं के हाथ से निकल चुकी थी? सुनिए दुनिया जहान में अशोक कुमार से।
दुनिया जहान। माओ, आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और ताकत का प्रतीक। चीनी नोट से लेकर वहां के हर सत्ता प्रतिष्ठान पर वो विद्यमान हैं। लेकिन उनकी सोच और विचारधारा क्या आज के चीन में प्रासंगिक है? ये सवाल 16 मई को एक बार फिर से उठा जब चीनी सांस्कृतिक क्रांति के 50 साल पूरे हुए। पहले तो इस मुद्दे पर चीन के सरकारी मीडिया में हर तरफ खामोशी पसरी रही और फिर चुप्पी टूटी तो इस बात से कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति के लिए आज के चीन में कोई जगह नहीं है और अब कभी इसे दोहराया नहीं जाएगा। जो क्रांति सच्चे कम्युनिस्ट मूल्यों को फिर से स्थापित करने के लिए लागू की गई थी, आज चीन की सरकार क्यों उसे याद नहीं करना चाहती? बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता बताते हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पर देखती है। क्या आप ऐसा कोई रेवोल्यूशन ना करें जो आपके हाथ से निकल जाए, कि जब जिन बच्चों को आप टूल के तौर पे यूज करते हैं वो ही हावी बन जाए, तो वही कल्चर रेवोल्यूशन में हुआ। माओ ज़ेडुंग ने शुरू तो किया था, लेकिन ये बच्चे जो फेल करते थे, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, जो गुंडे थे, उनको मौका मिल गया टीचरों को जिंदा जलाने के लिए, मारने के लिए, लाइब्रेरी जलाने के लिए, स्कूलों को बंद करवाने के लिए, जिनको आप टूल या सोल्जर रेड गार्ड के तौर पे यूज करते थे, वही विलेन बन गए और वही हावी हो गए स्टेज पर और पार्टी कुछ न कर पाई।
इस सांस्कृतिक क्रांति को चीन के हालिया इतिहास का एक बर्बर दौर माना जाता है। स्पष्ट आंकड़े तो मौजूद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस दौरान 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। माओ और उनके समर्थकों ने जहां इसे व्यवस्था को पाक साफ बनाने की प्रक्रिया का नाम दिया, वहीं उनके आलोचक इसे विरोधियों के सफाई की मुहिम बताते थे। इसके अच्छे और बुरे पहलुओं की पड़ताल करें, आइए इससे पहले एक नजर डालते हैं इसके आगाज और अंजाम पर।
16 मई 1966 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्देश जारी किया और सांस्कृतिक क्रांति का आगाज हुआ। इसी के साथ शुरू हुई एक दशक तक चलने वाली सियासी मुहिम। मकसद था देश और समाज से पूंजीवादी असर को साफ करना और बुर्जुआ सोच का खात्मा करना। माओ के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया। माओ ने रेड गार्ड बनाकर चीनी युवाओं को प्राचीन सोच और संस्कृति को मिटाने का लाइसेंस दे दिया। शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और सरकार के आलोचकों का दमन, उत्पीड़न और शोषण शुरू हुआ। यहां तक कि राष्ट्रपति लियू शाओची को भी हटा दिया गया। 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को खेतों में भेजा गया जबरन श्रम के लिए। दसियों हजार अधिकारियों पर गद्दारी के आरोप लगे। लाखों लोगों को दंडित किया गया। माओ की पत्नी और उनकी सहेलियों का गैंग ऑफ फोर बड़े फैसले ले रहा था, लेकिन 9 सितंबर 1976 को माओ के निधन पर गैंग ऑफ फोर को गिरफ्तार कर लिया गया और देश पर कब्जा करने के उनके इरादे पूरे नहीं हुए। इस तरह सांस्कृतिक क्रांति खत्म हुई।
सांस्कृतिक क्रांति के दौरान माओ की कही हर बात पत्थर की लकीर होती थी और उनका दर्जा लगभग भगवान के बराबर था। चीन में लंबे समय तक तैनात रहे पूर्व राजनयिक एलएल मेहरोत्रा बताते हैं।
जब मैं चीन में था तो मुझे एक चीनी ने ये कहानी सुनाई कि जहाज में कुछ लोग बैठे थे और जहाज में कुछ विकंपन आया और ऐसा लगा कि जहाज नीचे उतर के और क्रैश कर जाएगा, तो उन्होंने माओ की स्तुति की, माओ का ध्यान किया और वो ठीक हो गया। तो इस प्रकार की एक दैवी शक्ति को उनके ऊपर मंडित कर दिया उनको उस शक्ति से।
शासन, प्रशासन, शिक्षण संस्थाएं और मीडिया, सब जगह माओ ही माओ थे। वैसे वरिष्ठ विश्लेषक अभय कुमार दुबे कहते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति का मकसद अच्छा था, लेकिन उसे लागू ठीक तरह से नहीं किया गया।
धीरे धीरे जो रेड गार्ड थे वो इतना उद्दंड होते चले गए
कि वो जो उन्हें ब्रीफ दिया गया था, जो उनका ध्येय था, उस ध्येय से भी परे चले गए और पूरे समाज में काफी अराजकता की स्थिति फैल गई। तो अच्छे उद्देश्यों के लिए जो क्रांति की गई थी, वो क्रांति के जो नेता थे माओ सेतुंग, उनके हाथ से भी निकल गई।
हाथ में माओ की लाल किताब लिए रेड गार्ड 15 से 25 साल के युवाओं का समूह था, जिन्होंने पूरे चीन में खुलेआम पूंजीपतियों को निशाना बनाया, स्कूलों को बंद कराया और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाया। किशोर अवस्था में इसी रेड गार्ड में शामिल होने वाली दू हुआ ने बीबीसी को बताया,
Chaotic. Yeah, that's a definite. No any order, no authority.
अफरा तफरी तो निश्चित तौर पर थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था। जिन अध्यापकों का पारंपरिक तौर पर सम्मान होता था, उनकी कोई गरिमा नहीं थी। सड़क पर चलने वाली किसी भी लड़की को उठा लिया जाता था, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी मर्जी के कपड़े पहने हैं। आपको सिर्फ पैंट पहननी थी, मेकअप करने की इजाजत नहीं थी, बाल ज्यादातर लड़कों की तरह ही कटवाने पड़ते थे।
पूर्व राजनयिक एलएल मेहरोत्रा भी मानते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति में बहुत सी विकृतियां थीं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आज का जो चीन हमारे सामने है, उसके लिए माओ को कुछ तो श्रेय देना ही होगा।
भौतिक प्रगति के लिए ये अनुशासन की जो व्यवस्था उन्होंने स्थापित की, उससे चीन को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा। और मैं ये सोचता हूँ कि बिना उसके चीन इतना आगे बढ़ नहीं सकता था जितना आज बढ़ गया। तो इसलिए उन्हें माओ की देन के प्रति आभार तो प्रकट करना होगा ही।
लेकिन बात जहां तक माओ की विचारधारा और उनकी सोच की है, आज के चीन में शायद ही वो कहीं दिखाई देती है। विश्लेषक अभय कुमार दुबे,
आजकल चीन जिस रास्ते पर जा रहा है, वहाँ इस तरह की सांस्कृतिक क्रांति की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। वो पहले से ही बाजार समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं और सांस्कृतिक क्रांति इन्हीं प्रवृत्तियों के खिलाफ आयोजित की गई थी। तो पूरी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बिना किसी विशेष अंदरूनी मतभेद के बाजार समाजवाद के रास्ते पर चल रही है। अब उसे सांस्कृतिक क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए स्वाभाविक ही है कि अगर वो कहती है कि अब इस तरह की क्रांति दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए।
भारत में नक्सलबाड़ी जैसे आंदोलन चीन की इसी सांस्कृतिक क्रांति से प्रेरित माने जाते हैं। साम्यवादी विचारधारा में यकीन रखने वालों को माओ और उनकी सांस्कृतिक क्रांति हमेशा आकर्षित करती है, लेकिन पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव वाले इस दौर में उसकी प्रासंगिकता सवालों में है। अशोक कुमार, बीबीसी दिल्ली।
तो दुनिया जहां में आज आप सुन रहे थे कि माओ ज़ेदुंग की सांस्कृतिक क्रांति के आज क्या मायने हैं। कार्यक्रम में अब बात करेंगे खेल समाचारों की। मेरे सामने रजत चांदना मौजूद हैं। रजत, क्या हो रहा है खेल की दुनिया में?
जी, आज आईपीएल नू में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स की टीम प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पूरे दमखम के साथ किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम में एक बार फिर अपनी मजबूत बल्लेबाजी के क्रम पर निर्भर है। टीम के पास अब रहे एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल जैसे नाम हैं। पिछले दो मैचों में सभी ने इन तीनों की ताकतों को बेखूबी देखा है, पर बैंगलोर की कमजोरी है उसकी गेंदबाजी। वहीं पंजाब की कोशिश है कि वह सत्र का अंत अच्छी तरह से जीत के साथ करे। उधर पिछले साल की तरह भारत के जिम्बाब्वे दौर के लिए इस बार भी टीम में शायद नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। इस दौर पर सीमित ओवर में ही मैच खेले जाएंगे। ऐसे में चयनकर्ता चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने को मौका दिया जाए। हालांकि एमएस धोनी के खेलने को लेकर सवालिया निशान बरकरार है। शिखर धवन की फॉर्म भी काफ़ी ख़राब है और उन्हें भी आराम दिया जा सकता है। अगर धोनी इस दौरे पर नहीं जाते तो अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा सकता है। वहीं केएल राहुल को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए हम देख सकते हैं। सरफराज खान, श्रेयस अय्यर और करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है। इस दौरे पर भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। और ओलंपिक का टिकट पाने के लिए पहलवान सुशील कुमार के हाईकोर्ट जाने के फैसले को लेकर पहलवान नरसिंह यादव खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, जिसे क्वालिफाई किया है उसे ही ओलंपिक का टिकट मिलना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चांदना। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से हो चला है।
बीबीसी समाचार
गुजरात पुलिस ने गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने की घटना के प्रमुख साजिशकर्ता फारूक भाना को गिरफ्तार करने का दावा किया है। श्रीलंका में अधिकारियों ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में 37 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार संस्था रेडक्रॉस के मुताबिक 3 गांवों के 200 से ज्यादा परिवार भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। नाइजीरिया में चरमपंथी संगठन बोको हराम ने 2014 में 276 स्कूली लड़कियों को अगवा किया था, उनमें से एक लड़की वापस आई है। नाइजीरिया में सक्रिय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बोको हराम के चंगुल से बचने वाली ये पहली लड़की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। घटना चक्र कार्यक्रम को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।